الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سلاسل طریقت میں سلسلہ چشتیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جب ہم شجرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں جا بجا بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے ایسے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نام نظر آتے ہیں کہ جن کی روشنی آج تک سالکان راہ طریقت کے قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے. انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک جن کا تذکرہ آج ہم آپ کے سامنے کریں گے، سلسلہ چشتیہ کی عظیم روحانی شخصیت حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ علیہ. صاحب مرات الاسرار کے مطابق آپ کا وطن دینور ہے. دینور ایک شہر ہے جو کرمانشاہ کے مغربی کوہستان میں واقع ہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ دینوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور صاحب نفحات الانس نے یہ فرمایا کہ آپ کا نام تھا عبد الکریم، عراق کے جید علماء اور مشائخ میں آپ کا ذکر ملتا ہے. علوم و فنون کی تکمیل بغداد میں فرمائی، اور اس وقت بغداد علوم اور فنون کا مرکز تھا. عالم اسلام سے لوگ دور دراز مقامات سے بغداد کا رخ کرتے تھے. وقت کے جید علماء، مشائخ اور ہر علم سے تعلق رکھنے والے جو اس علم میں کمال رکھتے تھے بغداد میں موجود تھے. تو عالم اسلام سے لوگ بغداد کا رخ کرتے تھے، وہاں رہتے تھے، علوم و فنون کی تکمیل کرتے تھے، اور پھر وہاں سے اپنے اپنے شہروں اور اپنے ملکوں کا رخ کرتے تھے. حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ علیہ نے وہیں تعلیم و تربیت حاصل کی اور علوم و فنون کی تکمیل فرمائی. آپ کے معاصرین میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ ان دو کا نام آپ کے معاصرین میں آتا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسی جلیل قدر شخصیت تھے. علم اور روحانیت میں دونوں میں بلند مقام آپ نے حاصل کیا، مختلف مشائخ کی صحبت اختیار کی اور ان سے کسب روحانیت، کسب فیض، کسب علم فرمایا. اور خود فرماتے ہیں کہ میں کسی شیخ کی خدمت میں اس وقت تک حاضر نہیں ہوا جب اپنے آپ کو اس دنیاوی خیالات سے، ان تمام چیزوں سے پاک نہیں کر لی. یعنی اپنے ذہن سے یہ تمام چیزیں نکال کر پھر میں کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آدمی کچھ بھی ہو، جب وہ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پھر اس کی بارگاہ میں حاضر. چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، یا دنیاوی اعتبار سے کسی بھی منصب پر ہے، اگر وہ اس منصب کو لے کر، اگر وہ اس عہدے کو لے کر، اگر اپنی اس قابلیت کو لے کر تب وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کچھ حاصل نہیں کر سکے. اپنے آپ کو خالی کر کے حاضر ہوگا تب کچھ حاصل کرے. اب مثال ہے نا، ایک پیالہ بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر کچھ اور کیسے آ سکتا ہے؟ جب تک پیالہ خالی نہ ہو اس پیالے میں دوسری چیز ڈالی نہیں جا سکتی. ڈالنے کے لیے خالی کرنا ضروری ہے. تو جب خالی ہو کر آؤ گے تو بھر کر جاؤ گے. اور پہلے ہی بھرے ہوئے آئے کہ ہم عالم ہیں، ہم فاضل ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم یہ ہیں، کچھ حاصل نہیں کر سکتے. दूसरा इशारा यह है कि आजजी इनके सारी के साथ हाजिर हो, अपनी इल्मियत अपने काबिलियत को बाहर रखकर फिर हाजिर हो। तो फरमाते हैं, जब मैंने अपने आप को खाली कर लिया तब मैं किसी शेख की बारगाह में गया और जो कुछ उन्होंने फरमाया मैंने बगौर उसको सुना, न सिर्फ ये कि मैंने सुना बल्कि उस पर अमल भी किया। एक चीज है ना सुनना और एक चीज है अमल करना। सुनने वाले सारे होते हैं, अमल करने वाले एक दो होते हैं। सुनने वाले सारे हैं, एक मजमे में तकरीर हो रही है, खिताब हो रहा है, सब सुन रहे। कामयाब कौन है? जिसने अमल किया। खाली सुनकर और उसको छोड़ दिया तो उससे कोई फायदा नहीं। आप महफिल में आए, आकर बैठे, आपने सुना, जितनी देर बैठे वो सारा वक्फा इबादत में शुमार हो। इतनी देर आप तमाम गुनाहों से बचे रहे, झूठ से, गीबत से, चुगली से, किसी की दिलादारी से, कोई गलत काम से आप महफूज रहे, ये बिला शुबा आपको फायदा हुआ। लेकिन अमल अगर करेंगे तो इससे दुगना फायदा हो। तो हजरत ख्वाजा मुमशात आलू देनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं किसी शेख की खिदमत में उस वक्त तक हाजिर नहीं हुआ जब अपने आप को इस दुनिया से खाली नहीं कर लिया। बिल्कुल खाली करके मैं उनकी बारगाह में गया और जो कुछ उन्होंने फरमाया मैंने उसको अपने कल्ब और जहन के अंदर उतार लिया, दिल के अंदर उतार लिया, और फिर मैंने उस पर अमल भी किया। सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ मशाइख की खिदमत में हाजिरी देते रहे, उनके मलफूजात को सुनते रहे। लेकिन यह एक फैक्ट है और एक हकीकत है कि जब तक आदमी किसी को अपना रहनुमा ना बना ले, कश्ती रूहानियत पार नहीं लग सकती। जरूरी है कि कोई रहनुमा हो जो रहनुमाई करे और इस कश्ती रूहानियत को पार लगा, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखते कि शजरे की तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की जो एक फेरिस्त है, एक नाम है, एक के बाद एक शानदार नाम चला आ रहा। यह महज उस्ताद और शागिर्द की फेरिस्त नहीं है, ये एक से बढ़कर एक चमकता दमकता हुआ हिदायत का सितारा है कि जिसकी रोशनी आज तक मौजूद है और उस रोशनी में आज तक सालिकान राह सलूक रहनुमाई हासिल कर रहे। अगर खुद ब खुद होता तो कोई किताब लेकर बैठता, वजीफा पढ़ता और राय सलूक तय कर ले। नहीं, किसी रहबर की जरूरत। वजह क्या है कि इस राह में शैतान अपनी तमाम फितना सामानियों के साथ आकर फिर हमला करता। उसको पता है एक आदमी सीधे रास्ते पर जा रहा और वो बैठता ही सीधे रास्ते पर, टेढ़े रास्ते पर बैठने की शैतान को जरूरत ही नहीं, क्यों बैठेगा, वो तो है ही टेढ़े। जो लगे हुए काम से वो कहते ठीक है, तो लगे हुए, ये तो है ही मेरे यार पहले से, गलत कामों में लगे हुए। हां, जो सीधे रास्ते पर हिदायत पर सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं उनको बहकाना, उनको रोकना है। सबसे ज्यादा राह सलूक तय करने वालों को रोकता, और जैसा आदमी देखता है उसके नफ्सियात के मुताबिक बहका देता। एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, देखा एक आदमी नवाफिल में मसरूफ और शैतान खड़ा। उन्होंने शैतान से कहा, तू यहां क्या कर रहा है? कहा, मैंने तो इसको नफिल पढ़ने में लगाया। तूने नफिल पढ़ने में, तेरा काम तो रोकना है। कहा, मसला ये है, ये नया नया नमाजी बना है, नया नया इसको शौक हुआ इबादत का, मैंने इसको नफिल पढ़ने में लगा दिया, सारी रात नफिल पढ़ाऊंगा और जब फजर का वक्त होगा तो सुला दू। सारी रात की इबादत भी गई और फजर भी गई, इसलिए कि फजर तो फर्ज है ना, नफिल फर्ज नहीं है, वो तो नफिल है। तो नफिल पे इतनी इस्तेकामत और फर्ज गायब, इबादत भी गायब। इसलिए रहबर की जरूरत है कि वो आपको इन तमाम चीजों से आगाह करता। हजरत ख्वाजा मुमशाद अली देनूरी रहमतुल्लाह अलैह फिर एक मर्द कामिल की तलाश में निकले और हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन हबेरा अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनके दस्ते मुबारक पर आपने बैत की, और वो भी अपने जमाने के जलील कदर मशाइख में एक मकाम रखते थे। बसरा से आपका ताल्लुक था और ये भी मशाइख इराक में इनका एक नाम है, एक मकाम है, एक मर्तबा। जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मुर्शिद कामिल ने एक नजर डाली, देख लिया होगा ये तो पका हुआ आ रहा, इसको पकाने की जरूरत नहीं है, ये तो तैयार माल है, ये तो ईंधन बिल्कुल पक्का है, सिर्फ तीली लगाने की देर है, आग भड़क जाएगी। एक निगाहे करम डाली, इश्क इलाही की आग भड़का दी। जो अंदर चिंगारी थी फड़क गई, जो रोशनी अंदर थी बाहर आ गई। मुर्शिदे कामिल ने निगाहे कामिल डाली, मुरीद को भी कामिल बना दी। एक नजर में जाहिर और बातिन को पाक कर दी। एक और मकाम पर फरमाते हैं हजरत ख्वाजा मुमशाद अली देनूरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने आरिफ को एक आईना अता किया है, उस आईने में वो अल्लाह तबारक व ताला का जलवा देखता है। अब वो आईना क्या है, आप सोचेंगे शायद जैसे हमारे पास आईना होता है, ऐसा आईना अल्लाह ताला ने किसी आरिफ को दे दिया? नहीं, असल उसका जो कल्ब है यही आईना है। आईने का काम क्या है, दिखा देना। आईना जब सामने रखते हैं ना, जिसके सामने हो उसका चेहरा दिखा। अगर इंसान का कल्ब साफ हो जाए और गुनाहों की आलूदगी से पाक हो जाए, इसी आईने में मदीने वाले का जलवा नजर आ जाए। और उसमें बतदरीज पहले वो अपने शेख को देखता है, फिर अपने पीराने तरीकत को देखता है, अपने मशाइख तरीकत को देखता है, मशाइख मा सबक का दीदार करता है, और होते होते दर्जा बदर्जा बारगाह रिसालत तक पहुंच जाता। पहले अपने पीर को अपने कल्ब में देखता था और फिर हुजूर पुरनूर अलैहि सलातो वसलाम का दीदार करता। तो आईना ऐसा नहीं कोई चीज उठाकर दे दी, कल पर नजर डाली इसी को आईना बना दिया। अब ये मुराकबा क्या है, मुराकबा होता है ना आंखें बंद करके। अब ये भी अजीब बात है, दुनियावी एतबार से और रूहानी एतबार से जब हम देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता। दुनिया में हम किसी को देखेंगे आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं देखेंगे ना। अब आंखें बंद कर लो, दुनिया अंधेर है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और आंखें खोल ली सबको देख ली। यहां मसला ही अलग है, तरीकत का मसला ही अलग है, दुनिया वाले नहीं समझ सकते। वो कहते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे दीदार के लिए तो आंखें खोली जाती हैं, बंद की जाती है। बताइए, खोल के दीदार होगा ना, ये बंद करके दीदार करता। हम आंखें खोल कर देखते हैं, अल्लाह वाले आंखें बंद करके पूरी कायनात को देखते, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मुराकबा यही तो है, कल्ब की तरफ निगाह करो, इसमें अल्लाह लिखा हुआ देखो, और उसके अल्लाह अल्लाह की जर्ब लगाओ, अपने शेख का तसव्वुर करो। पहले शेख की सूरत आएगी और उसके बाद सरकार दो आलम अलैहि सलातो वसलाम की ज़ियारत। इसी आईने में सब कुछ है, इसी दिल में सब कुछ है, यही खुलूस है, मोहब्बत है, नफरत है, अदावत है, सब इसी में है। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगेगी तो जितनी भी गलत चीजें सब निकल जाएंगी और अनवारो तजल्लियात इसी में जाहिर हो जाएंगी। तो आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, वो इसलिए बंद करते हैं कि दुनिया वाले आंखें खोलकर इतनी दूर नहीं देख सकते जो आरिफ आंखें बंद करके पूरी कायनात को देख लेते। बैठा इधर है और देख रहा है वहां उधर, बैठे यहां और देखे वहां, आंख बंद करके। उसकी वजह क्या है, इंसान की दो आंखें हैं, दो, कितनी आंखें, दो, बल्कि मैं इसमें इजाफा कर दूं चार। आप कहेंगे दो तो कोई बात ही नहीं, हो तो हर एक के पास है, हर एक के पास दो आंखें। ये आंखें जो हैं ये जाहिर को देखती, ये दो आंखें ना, और दो आंखें दिल की आंखें, वो बातिन को देखती। ये जाहिर को देखती हैं, वो बातिन को देखती। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेराज की शब जब नबी पाक अलैहिस्सलातो वसलाम का सीने अकदस चीर कर कल्बे अथहर को निकाला और उसको आबे जमजम से धोया, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा फी हिमा ऐनानी तुबसेरान, ऐनान तुबसेरान व उजुनान तस्मान, मैंने देखा इसमें दो कान हैं जो सुनते हैं, दो आंखें हैं जो देखती। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे मुबारक, इसीलिए सरकार ने फरमाया मैं सोता हूं मेरा कल्ब जागता है। हम सो जाएं तो हमारा वजू टूट जाए, हमारी नींद नाकिज़े वजू है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान यह है कि सरकार सो जाएं और बेदार होने के बाद नमाज पढ़ा दें, वजू नहीं टूटेगा। हुजूर की नींद नाकिज़े वजू नहीं है, दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। तो उनके कदमों की बरकत से जो आरिफ के दिल में आंखें हैं, जब वो खुल जाएं तो फिर जाहिर आंख की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर बंदा जब उन आंखों से देखता है तो फिर वो इन आंखों को बंद कर लेता है, वो कहता है इनको तो बंद ही रखो। वो फिर दिल की आंख से देखता, बातनी आंख से देखता, और जाहिरी आंख की देखने की हद है, कहीं ना कहीं जाके हद हो जाएगी। कोई आदमी 10 फीट देखता है, कोई 20 फीट, कोई 50 फीट, कोई 100 फीट, और अगर दूरबीन लगा ली तो और ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इस जाहिरी निगाह की हद हो जाएगी, उससे आगे नहीं। बातनी निगाह की कोई हद ही नहीं। गौसे आजम ने फरमा दिया, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान कखर तलतिन अला हुक्म इत्तिसाल, मैं पूरी कायनात को अपनी हथेली पे देखता हूं जैसे राई का दाना। ये बातनी निगाह है। तो ख्वाजा मुमशाद अलू देनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ का दिल जमाल इलाही का आईना है, उसका कल्ब जो है यही आईना है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आईना उसे अता किया है जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला का जलवा देखता। लेकिन इसको देखने के लिए आरिफ बनना जरूरी है, और आरिफ बनने के लिए राह सलूक तय करना जरूरी है, और राह सलूक तय करने के लिए किसी के हाथ पर बैत करना जरूरी है, और मुजाहिदा और चिल्ला कशी रियाजत करना जरूरी है, तब जाके ये कल्ब साफ होगा। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुशाहिदा करना चाहते हो तो मुजाहिदा करो। दो लफ्जों में सारी बात कह दी। मुशाहिदे के माना देखना, मुशाहिदे के माना देखना, और मुजाहिदे के माना कोशिश, रियाजत, चिल्ला कशी। दो लफ्जों में बात कह दी। मुशाहिदा करना चाहते हो तो मुजाहिदा करो। जब तुम मुजाहिदा करोगे तुम्हारा कल्ब गुनाहों की आलूदगी से पाक हो जाएगा, तो फिर इस जाहिरी आंख से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें बंद करके सब कुछ देख लो, फिर तुम ऐसी ऐसी चीजें देखोगे कि जो तुम देखोगे लोग नहीं देखें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ना, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, और वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। उनका तो मकाम ही बुलंद है। उनके कदमों की बरकत से आरिफ की यह कैफियत हो जाती है कि फिर वो बातनी चीजों का मुशाहिदा करता है, जो चीजें अवाम से पोशीदा हैं फिर वो उनको देखता है। और उसके लिए जरूरत नहीं कि वो कोई दूरबीन लगाकर देखे या दिन की रोशनी में देखे, अरे वो तो रात की तारीकी में ही तो देखता है। जब सारी दुनिया सो जाती है, महवे ख्वाब होती है, उस वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगाता है और अपने कल्ब पर निगाह करता है, पूरी कायनात का मुशाहिदा करता है। तो कल्ब जो है ये आईना है, और इसको आईना बनाने के लिए इबादत की जरूरत है, रियाजत की जरूरत है, मुजाहिदे की जरूरत है, चिल्ला कशी की जरूरत है। जब ये मुजाहिदा होगा तब मुशाहिदा होगा, और जिसका मुजाहिदा जितना कामिल होगा उसका मुशाहिदा भी उतना कामिल होगा। मसलन किसी ने ये सोचा, मैं नमाज पढ़ लूं 5 वक्त, मैंने रोजे रख लिए, मैंने जकात सदका तो खैरात हज ये तमाम चीजें कर ली, काफी है, उसका मुशाहिदा उतना ही, ये तो फराइज है ना, उसने अदा कर ली। लेकिन जिसने इसके अलावा भी चिल्ला कशी की, रियाजत और मुजाहिदे किया, अपने नफ्स का जिहाद किया, जितना ज्यादा रियाजत और मुजाहिदा होगा मुशाहिदा उतना ही कामिल हो, उतनी ज्यादा बातनी चीजें वो देख सकेगा, और बातनी चीजें वो बातनी आंख से ही नजर आती, वो फिर जाहिरी आंख से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, हजरत ख्वाजा मुमशाद अलूदेनूरी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला एक आईना आरिफ को अता फरमा देता, उस आईने में वो रब का जलवा देखता। तो मशाइख तरीकत ने आपके इस इरशाद की तशरीह करते हुए फरमाया उस आईने से मुराद आरिफ का दिल है, आरिफ का दिल है। और आरिफ किसी इंसान का नाम नहीं है, नाम भी हो सकता है, मौसों का नाम होता है आरिफ, लेकिन ये तसव्वुफ तरीकत में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। देखिए, एक है आलिम जिसके माने हैं जानने वाला, और एक है आरिफ जिसके माने पहचानने वाला। आलिम के माना जानने वाला और आरिफ के माना पहचानने वाला। जानने वाले बहुत से होते हैं, पहचानने वाले चंद होते हैं। जानने वाले बहुत से होते हैं, सब जानते हैं, अखबार में पढ़ लिया, नाम सुन लिया, चैनल पे कोई खबर आई, किसी का नाम आ गया, अब हाँ मैं तो जानता हूं। लेकिन कोई होते नहीं, इसको तो मैं पहचानता हूं, इसको तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। तो इंसान जानता सबको है, पहचानता किसी किसी को। इसी तरह आलिम बहुत होते हैं, आरिफ कम होते हैं। और आरिफ वही है, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसकी भी एक अलग तशरीह है, सिर्फ इसी पर एक अलग से नशीस करेंगे किसी दिन, कि जब अपने आप को इंसान पहचान ले तो फिर वो अपने रब को पहचान ले। तो ख्वाजा मुमशाद अलूदेनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत और रियाजत की, चिल्ला कशी की, मुजाहिदा किया, और हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन हुबैरा अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत की, और पीर कामिल ने अपनी निगरानी में आपको राह सलूक तय करा दी, उसके नशेब फराज से आगाह किया। अब इसकी मिसाल आप ये समझें कि इंसान एक रास्ते से गुजरता है, उसको पता है कहां पर स्पीड ब्रेकर है, कहां पर गड़ा है, कहां सड़क साफ है। अगर आप अंधेरे में भी गुजर रहे हो तो जब वो मकाम आएगा, आप बराबर बैठे हैं, गाड़ी कोई और चला रहा, एक मिसाल दे रहा हूं, आप कहेंगे देखो इस मकाम पे एक गटर है, जरा सा बचा के गुजर जाना, और आगे बढ़े देखो आहिस्ता कर लेना, यहां पर एक स्पीड ब्रेकर है, तेजी में गुजरोगे तो गाड़ी उछलेगी, और आगे बढ़े देखो यहां रोड साफ है, यहां से निकल जाओ तेजी में। यही मिसाल राय सलूक की है कि जब कोई इस मनसब पर फाइज होता है और वो चिल्ला कशी करता है तो ये सारे नशे व फराज से गुजर जाता, किस मकाम पर शैतान बहकाता है, किस मकाम पर शैतान अपनी फितना सामानियों के साथ हमला करता है, किस मकाम पर आकर वो रोकता है, और किस मकाम पर आकर इबादत का शौक दिलाता है। ये भी कमाल की बात है, इबादत का शौक भी दिलाता है, उसमें वही उसकी बदनीयती शामिल होती है। जैसा कि वाकई हमने पहले सुनाया कि सारी रात मैं इसको नफिल पढ़ाऊंगा और फजर की नमाज गायब कर दूं। तो जो रहनुमा है वो आपकी रहनुमाई करेगा कि इस राह में तुमने कदम रखा है, अब ये चिल्ला करने के लिए तुम बैठे हो, जब फला मकाम पर पहुंचोगे शैतान फौरन हमला करेगा। इस तरह पढ़कर उस रास्ते से गुजर जाना। जब वो देखता है कि कोई निगरा है, कोई रहबर है, कोई रहनुमा है, फिर वो चला जाता और इंसान आराम के साथ राय सलूक तय कर लेता। एक और बात इसमें याद रखने की है, और वो ये है कि इस राह में रहबर के रूप में रहजन भी मौजूद है। जानते हो ना, रहजन डाका डालने वाला, चोरी करने वाला, माल चुराने वाला, और रहबर रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो इस राह तरीकत में रहबर के रूप में रहजन भी मौजूद है कि अगर बगैर सोचे समझे किसी के हाथ पर बैत कर ली और उसके पीछे चल पड़े, पता ही चलेगा कि दरजात मरातिब ये जो चीजें मिलनी है वो तो अलग बात है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी लूट कर ले गए, जो थोड़ी बहुत इबादत है वो भी जाया कर दी। इसलिए अगर किसी के हाथ पर बैत करो तो पहले देख लो कि इसका ताल्लुक अपने अगले वाले से है या नहीं, इसकी नजर गौसे आजम पर है या नहीं, इसकी नजर गरीब नवाज पर है या नहीं, इसकी नजर अपने मशाइख मासबक पर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि रहबर के रूप में रहजन हो, अगर रहबर है तो वाकई वो रहनुमाई करेगा, और ऐसी रहनुमाई करेगा کہ پھر تم صراط مستقیم پر چلتے رہو. اور ان کی رہنمائی ایسی ہوتی ہے بزرگان دین اولیاء کاملین کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ زندگی میں رہنمائی کرتے ہیں, اپنے وصال کے بعد بھی رہنمائی کرتے ہیں. اگر آج بھی ہم ان سے اپنا روحانی رابطہ مستحکم رکھیں, آپ یقین کریں کہ آج بھی وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں. حضرت خواجہ ممشاد آلودہ نوری رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کی ایک نامور شخصیت تھے. آپ اپنے آپ کو چھپاتے رہے, اپنے کمالات اپنی کرامات کو ظاہر نہیں کیا, آج بھی اور ان کے ساری کا پیکر بنے رہے اور ساری زندگی گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی. اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جو بھی آپ کے قریب آیا وہ ہدایت پا گئے, زبان سے جو نکلا وہ ہو گیا. جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے وقف کر دیتا ہے اور عبادت اور ریاضت مجاہدہ کر کے ایک مقام پر پہنچتا ہے تو پھر خالق کائنات اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے. پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ محفل میں بدبخت آتا ہے تو نیک بخت ہو کر جاتا ہے, شقی آتا ہے تو سعید بن کر جاتا ہے, گناہگار آتا ہے تو نیکوکار ہو کر جاتا. جس پر نگاہ پڑ گئی ظاہر اور باطن کو پاک کر دی, تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر دی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قلب کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کریں اور اپنے مشائخ سے اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم رکھیں. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور اپنے مشائخ طریقت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین, یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ہم سب کو اپنے مشائخ طریقت اور خصوصاً اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی طرح اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.